प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
हमारे आज के श्रोता साथी रायपुर के श्रोता हैं। एक नहीं दो दो श्रोता हैं। कौन है ये श्रोता, कीजिए जरा सा इंतजार। सुनते हैं कार्यक्रम शुभ्रा ठाकुर के साथ।
रेडियो अर्पा 90.8 FM पर मैं हूँ शुभ्रा, आपके साथ लेकर एक बेहद ख़ास प्रोग्राम जिसका आप सबको होता है इंतज़ार और जिसमें शामिल होने के लिए हर श्रोता का दिल होता है बेकरार, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यह है रेडियो अर्पा का ख़ास प्रोग्राम सप्ताह के श्रोता। और सप्ताह के श्रोता में आज हमारे साथ कौन हैं? आज हमारे साथ हैं रायपुर के बहुत ही जागरूक श्रोता विनोद वंडलकर जी। और विनोद वंडलकर जी के साथ भी कोई है जिसके बारे में आपको पता चलेगा जब हम उनसे बात करेंगे। तो विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सप्ताह के श्रोता में। कैसे हैं आप?
धन्यवाद सुब्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस कार्यक्रम में। काफी हम बहुत दिनों से कार्यक्रम सुन रहे हैं और काफी इंतजार होने के बाद हमारा नंबर लगा, इसलिए मैं अर्पा रेडियो के पूरे परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।
तो सबसे पहले विनोद जी, हमारे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप, आपके परिवार में कौन कौन हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
मेरे परिवार में तो तीन लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी मीना मंडलकर और मेरी बिटिया विविधा, जिसका 3 फरवरी को जन्मदिन भी है।
अरे वाह, तो बहुत बहुत बधाई विविधा जी।
हाँ जी, और मैंने बीकॉम तक किया है, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, अकाउंट का काम है मेरा।
अच्छा।
एक अच्छी कंपनी में जॉब में हूँ मैं, और मेरा शौक है रेडियो, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, तो रेडियो में कार्यक्रम में भाग लेना, पूरे देश भर के कार्यक्रम रेडियो में पहले भाग लेता था, और अभी अर्पा रेडियो जब से चालू हुआ तो इसका नियमित रूप से मैं सुन रहा हूँ और बहुत बढ़िया लगता है यहाँ के पूरे कार्यक्रम
जी। तो विनोद जी, रेडियो आपने कब सुनना शुरू किया था, कुछ याद है आपको, क्या रही होगी आपकी?
मैं तो 8वीं क्लास में तब से सुनते आ रहा हूँ मैं।
तो पहला कार्यक्रम कौन सा आपने सुना था रेडियो पर?
मैं उस समय आकाशवाणी का रायपुर से चालू किया, उसके बाद रेडियो सिलोन हो गया, विविध भारती, उर्दू सर्विस, इस टाइप का पूरे देश भर के कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया।
रेडियो पर जब बहुत सारे श्रोताओं के नाम आते रहे होंगे तो आपको भी ये लगता होगा कि मेरा नाम भी कभी इसमें शामिल हो। पहली बार आपने पत्र कब लिखा रेडियो के लिए?
युवानी में कार्यक्रम आता था सवालों का आईने में, तो उसमें मैंने पहले लेटर लिखा, उसके बाद कुछ फरमाइश भेजा, तो सब कार्यक्रम चालू हो गया। नाम आना तो इतना अच्छा लगा मेरे को, क्या बताऊं
जी।
उसके बाद से मैंने जो चालू किया, तो आज पर्यंत तक मेरा एक जो रूटीन है, जब तक रेडियो ना सुनूं ना भेजूं चैन नहीं पड़ता, कहना चाहिए।
आपने सवालों के आईने के लिए पत्र लिखा और बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक कार्यक्रम है ये युवाणी का। इसके अलावा और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद है?
आकाशवाणी से संबंधित तो प्राय सभी कार्यक्रमों में भाग लेता था मैं। आपके मीठे गीत वगैरह हो गया, वहाँ सुर सिंगार जैसे कार्यक्रम थे, बिंदिया प्रोग्राम वहाँ भिजवाते थे, ऐसे कार्यक्रम मतलब सारे कार्यक्रम, फोन इन फरमाइश, अभी जब से ये नया टेक्नोलॉजी आया है फोन इन फरमाइश, खुद की आवाज सुन सकते थे, ये बहुत ही मजेदार रहा कार्यक्रम। और देश भर के सभी केंद्रों में हमने फोन लगाया है और सब जगह हमारी बात हुई है और अपने मनपसंद गीत हम सुनते हैं और मनपसंद अनाउंसर से सीधे संवाद करने का जो अवसर मिलता था उसका तो बात ही निराला है उसका। और इसके कारण से हमारे देश भर के श्रोताओं से हमारी इतनी जान पहचान हो गई है कि जहाँ भी जाओ स्वागत सत्कार हमारा ऐसा होता है कि मत पूछो।
आपने अभी गीत संगीत की बात की, सबसे पहले कौन सा गीत अपनी पसंद का श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
फिल्म है तेरे मेरे सपने, फिल्म का एक गीत है जो मुझे बहुत ही पसंद है, पुरानी फिल्म है, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, किशोर कुमार लता मंगेशकर।
तो चलिए, आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं तेरे मेरे सपने फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।
जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी, जीवन की बगिया Oh
मिलजुल के मांगा
वो तेरा मेरा होगा,
जब जब वो मुस्कुराएगा
अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा,
खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। हम और बंधेंगे हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे
हम तुम कुछ
और बंधेंगे,
होगा कोई बीच
तो हम तुम और बंधेंगे,
बांधेगा धागा कच्चा
हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी चहकेगी,
खुशियों की कलियां झूमेंगी झूलेंगी फूलेंगी
जीवन की बगिया। जीवन
प्राण हमारा
फूलेगा एक फूल
खिलेगा प्यार हमारा,
दिन का वो सूरज होगा
रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा
थोड़ा तुम्हारा
आएगा फिर से
बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी
लहकेगी
चहकेगी,
खुशियों की कलियां झूमेंगी
झूलेंगी
फूलेंगी।
इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं सप्ताह के श्रोता विनोद वंडलकर जी। विनोद जी, रायपुर के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताइए जो दूसरे प्रदेश के हैं जो सुनते हैं रेडियो अर्पा और जुड़े हुए हैं सभी से, उनको रायपुर के बारे में बताइए।
रायपुर में तो आजकल राजधानी है तो बाहर से बहुत सारे का स्मार्ट सिटी बन गया है, नया रायपुर देखने लायक है, बाहर से भी आते हैं श्रोताओं को हम नया रायपुर जाते हैं घुमाने के लिए, और साल में हम लोग श्रोता सम्मेलन का भी आयोजन करते हैं रेडियो से, तो देश भर के श्रोता और अनाउंसर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं।
और रायपुर के आसपास और कौन कौन सी जगहें हैं घूमने की?
नंदन वन है घूमने के लिए, चंदखुरी फार्म में आजकल जो कौशल्या माता मंदिर बना हुआ है
जी।
और राजिम देखने लायक है, और चंपारण है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली है, बाहर नवापारा वगैरह है आसपास देखने योग्य है,
बहुत सारी जगहें हैं है ना?
जी जी, बहुत सारी चीजें हैं।
हमारे जो दूर दूर के श्रोता सुन रहे होंगे आपकी बात, उनका मन हो रहा होगा कि वो कब आकर चंद्रखुरी का कौशल्या मंदिर देखें, कब वो बार नवापारा पहुंचे और आनंद उठाएं। विनोद जी, ये बताइए कि आपकी जो जीवन साथी हैं, आपने बताया वीणा वंडलकर जी, इनका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे वीणा कहीं पर झंकृत हो उठी है। है ना? तो कुछ बातें हम वीणा जी से भी करना चाहेंगे। वीणा जी हैं वहाँ पर?
हाँ जी, बस में बैठी हो भी कार्यक्रम वो सुनती है
जी।
और सारे कार्यक्रम में भाग लेती है, और हमारे 19 तारीख को हम लोग का शादी की सालगिरह भी है। 19 फरवरी का महीना हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है कहना चाहिए। 3 फरवरी की बिटिया का बर्थडे और 19 फरवरी की हमारी शादी की सालगिरह।
और फरवरी माह में भी आप सप्ताह के श्रोता बनकर रेडियो अरपा पर आ रहे हैं।
जी, मीना जी से बात कीजिए।
जी मीना जी,
हेलो,
कैसी हैं आप?
एकदम फर्स्ट क्लास हो दीदी।
आपकी आवाज में बड़ी मिठास है वीणा जी, बहुत अच्छा लगता है आपका नाम लेते हुए। संगीत के सुर झंकृत हो जाते हैं।
ये तो आपका बड़प्पन है और ये आपका प्यार है मेरे लिए कि जो आपको इतने अच्छे शब्दों से नवाजती है।
अच्छा, आप ये बताइए कि आप शादी से पहले से ही रेडियो सुनती थी या विनोद जी के जीवन में आने के बाद आपका जुड़ाव रेडियो से हुआ?
दीदी, शादी से पहले तो मैं रेडियो जरूर सुनती थी, पर क्या है कि शादी के बाद इनके साथ अगर हमने कुछ किया है तो रेडियो पे हम लोग पूरे तरह से समर्पित ही रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इनका जो ध्यान है वो रेडियो के प्रति बहुत ज्यादा है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं इनके साथ हाथ से हाथ मिला के रेडियो पे रहे। और रेडियो पे दीदी हमको बहुत ज्यादा यानी मान सम्मान मिला है, और इसमें दीदी मुझको ये बहुत अच्छा लगता है कि इस रेडियो पे जो है हम महिलाओं के लिए स्पेशल हर प्रोग्राम होता है, ये बात और किसी मीडिया में नहीं है। और दीदी आप देखिए कि आज डिजिटल इंडिया हो गया है, आज अरपा रेडियो आपने जो खोला है कम्युनिटी, तो ये एक रेडियो की दुनिया के प्रति एक और एक नया स्टेप है। पहले आकाशवाणी रायपुर आया, फिर FM आया, और फिर अब मोबाइल में एक ऐप आया है, उस ऐप में आपने अरपा रेडियो चालू किया है। और ये बिलासपुर में अगर कोई जाना जाता है अरपा है तो वो एक वहाँ एक नदी है, और छत्तीसगढ़ ये जो हमारा राजकीय गान है उस पे अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो आप सोचिए कि आपका ये अरपा रेडियो और बिलासपुर, ये सारी चीजें इतने अच्छे से संबंध हो गया है कि अरपा रेडियो जो है उसपे हफ्ते के श्रोता में आपने मुझको जो मान दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करती हूँ। मैं अपने पति के कारण यहाँ तक पहुँची हूँ, हफ्ते की श्रोता में मैं आज आ रही हूँ, इसका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है।
वीणा जी, आपने इतनी सुंदर व्याख्या की है रेडियो अरपा की, हमारे राजकीय गीत से जोड़ा, अरपा नदी से आपने जोड़ा, और निश्चित रूप से इसके लिए रेडियो अरपा की जो हेड हैं संज्ञा टंडन जी, वो बधाई की पात्र हैं, क्योंकि इतना सुंदर नाम उन्होंने चुना जिससे हमारे राज्य की संस्कृति की झलक मिलती है।
हाँ, मेरे को दीदी इसका नाम और ये बिलासपुर से जुड़ा और ये सारी चीजें उसी दिन बहुत अच्छी लगी जब मैंने देखा कि अरपा रेडियो, अरे वाह, और वो भी बिलासपुर में, सब एक दूसरे से कोरिलेट।
वीणा जी, आपने तो बताया कि रेडियो एक दोस्त की तरह आपके जीवन में शामिल है।
अपनी बिटिया का नाम भी विविधा रखा है।
अच्छा।
क्योंकि हमने इतना विविध भारती सुना, ये रेडियो से इतने कोरिलेट है, तो हमको ऐसा लगा कि चलिए हम अपनी बिटिया का नाम विविधा रखते हैं।
बहुत सुंदर, वाकई आपका जो परिवार है उसमें रेडियो रचा बसा है। बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे थे कि रेडियो एक दोस्त की तरह आपके जीवन में शामिल है, क्या क्या सीखा है आपने रेडियो से?
दीदी इसमें ना एक चौमुखी विकास होता है रेडियो में, सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है, आई थिंक इसमें सबसे पहले आप सुनेंगे तो भक्ति वंदना आती है जिससे मतलब अपना दिन की शुरुआत होती है, फिर थोड़ी देर के बाद भी न्यूज आता है, उस न्यूज में आपको क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जिससे आपको राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजों की जो नॉलेज है, अगर समाचार में आप सुनेंगे तो उस 5 मिनट में आपको पूरी चीजें पता चल जाएगी, अगर कोई अपडेट होता है तो इस रेडियो से ही होता है, फिर उसके बाद इसमें गीत संगीत आता है, फिर इसमें खेल आते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके विकास के लिए अपने को कहीं और जाना पड़ेगा, और ये सारी चीजों का संचयन सिर्फ रेडियो में ही होता है। और उसके अलावा कि एक श्रोता अपनी भावनाओं को, अपने हर त्योहार को मनाना है तो वो शेयर करेगा, तो वो रेडियो में सारे इस टाइप के प्रोग्राम आते हैं वो आ जाता है, और उसके बाद फरमाइश प्रोग्राम होता है जिसमें सबके एक अपना कंट्रीब्यूशन होता है, हमको अपना नाम सुनाई देता है, तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रत्यक्ष रूप से हम रेडियो में जुड़ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो में ही मिलती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। शांति, सुकून, गीत संगीत, है ना? तो चलिए चलिए इसी बात पर आपकी पसंद का एक गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
दीदी मैं बताऊं, भारतीय नारी की अगर पहचान है तो वह है 16 श्रृंगार। वो जो नारी होती है वो श्रृंगार को बहुत महत्व देती है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में अभी जो मिस यूनिवर्स हुआ था उसे प्रतिनिधित्व करती है और वो जीत के आती है और हमारे इंडिया का नाम रोशन करती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा गाना जो मेरे को मेरे दिल के बहुत करीब है और वो है अभिमान फिल्म का तेरी बिंदिया, रे हाय हाय तेरी बिंदिया, सज्जन बिंदिया ले लेगी मेरी निंदिया। ये गाना मुझको बहुत पसंद है।
वाह वाह, क्या गाना चुना है आपने, बहुत ही खूबसूरत गीत है वाकई। तो चलिए हमारे श्रोताओं को हम सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो वीणा जी को बहुत पसंद है।
लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं
ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो अर्पण 90.8 एफएम पर। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं सप्ताह के श्रोता विनोद वंडलकर जी और उनके साथ हैं उनकी धर्मपत्नी वीणा वंडलकर जी। विनोद जी, अभी वीणा जी ने बहुत सुंदर बात कही भारतीय संस्कृति के बारे में और यहाँ के श्रृंगार के बारे में। हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ का खई खजाना, छत्तीसगढ़ के आभूषण, ये तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आपको कौन सी चीज, खाने की चीज सबसे ज्यादा पसंद है ये बताइए।
छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख चीज है जो आए दिन हमारे घरों में बनता है, हम लोग राष्ट्रीय, लेकिन वो फरा
वाह
जी जी आए दिन हम लोग घर में बनाते हैं और खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कोई कार्यक्रम होता है ना तो आए दिन होते रहता है, तो हम लोग जाके हमारा मेन फरमाइश वही रहती है फरा खाए।
और वीणा जी के हाथ की बनी कौन सी चीज सबसे पसंद है?
तो भी आजकल वही बना रही है ज्यादा से
अच्छा यहाँ के रंग में रंग गई है वीणा जी।
जी, जी, जी,
अच्छा जैसे देखिए हर घर में कभी ना कभी किसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस तो होती है। अब आप लोग इतने अच्छे हैं कि रेडियो भी साथ सुनते हैं, तो
हम लोग का आजकल रेडियो मोबाइल है इसलिए अपने कोई टेंशन होता नहीं। अब तो है हम लोग को वैसे पसंद देख ही रहता है, जो अच्छा। स्टेशन चल रहा है वो चलने दो।
अच्छा बहुत बहुत बढ़िया। तो रेडियो अर्पा के कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
एक तो अनीश जी का कार्यक्रम इतना जबरदस्त है कि तारीफ करे शब्द नहीं है। इतना जबरदस्त प्रोग्राम पेश करते हैं कि ये है शीर्षक गीत हो गया, हफ्ते एक श्रोता है
जी।
ये सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका अब हम फरमाइश भेजने का ऑनलाइन सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्यक्रम सभी हम भेजते हैं और सुनते हैं, मजा आता है कार्यक्रम सुनने, एंजॉय करते हैं।
रेडियो अर्पा से आपका जुड़ना कैसे हुआ था?
ऐप के माध्यम से हमें पता चला और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ऐड किए, तो उसके बाद से हम लोग जुड़ गए।
अच्छा।
जो भले कहीं पर बैठे ऑफिस में बैठे हैं ईयरफोन लगाए सुनते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं, दोनों काम हो जाता है
जी। रेडियो से जुड़ी कोई यादगार बात जो आप हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहें?
रेडियो से जुड़ी ये कि जब श्रोता सम्मेलन करवाते हैं तो देश भर के श्रोता आते हैं, वो ही हमको अच्छा लगता है। बड़े पैमाने पर होता है कार्यक्रम यहाँ पे। और सबसे मेन चीज क्या, हमारे छत्तीसगढ़ में जो सेलिब्रिटीज लोग हैं रेडियो से, जैसे मनोहर महाजन वगैरह
जी,
रिपु सुदन एलावाली, विजय लक्ष्मी देसराम, ये भर्ती हमारे रेडियो श्रोताओं की संख्या और प्रेम को देखते हुए हमारे रायपुर शहर में आ चुके हैं और हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कमल शर्मा जी हो गए विविध भारती से, अमरकांत दुबे और ये जैसे सब लोग आ चुके हमारे कार्यक्रम में, ये सबसे बड़ी हमको अच्छा लगता है।
वाकई छत्तीसगढ़ का जो श्रोता है वो इतना जागरूक है, छत्तीसगढ़ के श्रोता का नाम देश विदेश के हर स्टेशन पर गूंजता है।
छोटा सा छोटा गाँव भी हो तो उसका रेडियो पर आता ही है, ऐसा है
जी।
कोई भी ऐसा स्टेशन ना हो कि छत्तीसगढ़ के श्रोता बगैर वो पूरा ना हो, ऐसा हो गया।
अब विनोद जी हम वीणा जी से जानना चाहेंगे कि रेडियो से जुड़ी कोई घटना उनको ऐसी याद आती है, कोई मजेदार सी घटना, या कभी रेडियो पे नाम के दौरान या कार्यक्रम के दौरान या फरमाइशी कार्यक्रम के दौरान या रेडियो सुनते समय कोई ऐसी यादगार घटना है?
हाँ दीदी, मैं रेडियो पे फोन इन फरमाइश प्रोग्राम होते हैं और ये मतलब लेडीज लोगों के फोन इन फरमाइश के स्पेशल होते हैं, उसमें मैं रेगुलर आकाशवाणी रायपुर में फोन लगाया करती हूँ। तो जब कोई त्यौहार आता है तो उस त्यौहार से रिलेटेड मुझको किसी को शुभकामनाएं संदेश देना है तो वो मैं रेडियो से देती हूँ। तो मेरे जितने भी जान पहचान के जो भी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, तो उन सबको ना ये मालूम रहता है कि आज दिवाली का त्यौहार है, आज होली का त्यौहार है, तो सारी विशेष जो हमको वीणा के तरफ से मिलेगी, विनोद के तरफ से मिलेगी, वो रेडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दीदी मैं आपको ये बताऊं कि मतलब इस माध्यम की वजह से हम सबके घर घर तक के, सबके दिलों तक के पहुँच जाते हैं।
बहुत सही बात आपने कही वीणा जी,
जी।
और देखिए एक ऐसा संयोग है कि विनोद जी का नाम, आपका नाम, आपकी बिटिया का नाम, तीनों वी से शुरू होता है।
ये तो ना भगवान का हमारे को आशीर्वाद है दीदी।
अब ये बताइए कि आप दोनों की पसंद का कोई एक गीत ऐसा है जो हम श्रोताओं को सुनवा सके?
जी दीदी, मुझको ना और इनको, हम को प्रकृति से बहुत प्यार है। कभी समय मिलता है तो हम अपना जो भारत देश है दीदी, यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, समुद्र मिलेगा, वर्ल्ड में मैं सोचती हूँ कहीं नहीं है, पर अपने इंडिया में सब जगह है। जब पहाड़ की वादियों में जब घूमने गए थे तो वहाँ पे हम दोनों का एक गाना है वो बहुत अच्छा लगा था, और वो गाना था जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, तो वो गाना मुझको बहुत अच्छा लगता है और ये सोच के बहुत गर्व होता है कि अपना इंडिया कितना अच्छा है कि यहाँ पर आप किसी भी कोने में कहीं भी आप जा सकते हैं और आपको सारी चीजों की देखने मिलेगा, वो खाली सिर्फ अपने इंडिया में ही है। बर्फीले पहाड़ों में आप चले जाइए, समुद्र में चले जाइए, तीनों ओर समुद्र से घिरा है, समुद्र नदियाँ और पहाड़ में जाते हैं दीदी, और वहाँ पर एक नाव हो तो आपको ये गाना जरूर याद आएगा। तो मुझको और इनको ये गाना इसलिए बहुत पसंद है।
बहुत खूबसूरत गीत है कटी पतंग फिल्म का।
जी 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 जी।
और ये तो मेरे फेवरेट मुकेश जी की आवाज़ में है। हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कटी पतंग फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।
जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बाल माँ।
इस गीत के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अर्पण 90.8 FM पर सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में। और सप्ताह के श्रोता पे आज हमारे साथ हैं विनोद वंडलकर जी और वीणा वंडलकर जी। इनसे बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है। अब हम जानना चाहेंगे विनोद जी से कि रेडियो सुनना तो आपने बिल्कुल जीवन में शामिल कर लिया है, इसके अलावा और क्या क्या शौक?
अखबार पढ़ना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना बचपन से शौक रहा है मेरा। लाइब्रेरी जाता था बचपन में, वहाँ कम से मैं 2 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पुस्तकें पढ़ता था। तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, ये मेरे खेल कूद में बैडमिंटन वगैरह थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, पर अब समय मिलता नहीं है। फिर भी रात वगैरह में ठंडे के मौसम में वहाँ खेल लेते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह चले जाते हैं, दिनचर्या
जी। और वीणा जी, मुझे लगता है आप जितना मीठा बोलती हैं, जितने अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करती हैं, निश्चित रूप से लेखन में आपकी रुचि होगी।
हाँ दीदी, मुझको लेखन में रुचि तो है, और मैं आपको बताऊं कि मुझको पढ़ने का भी बहुत शौक है, और मैं हरिवंश राय बच्चन की जो बच्चन रचनावली है
जी,
वो 9 भाग में आती है, तो मैंने उनकी पूरी आत्मकथा पढ़ी हूँ, मतलब उनकी सारी कविताएं जो है वो पढ़ी हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो वहाँ के लाइब्रेरी से निकाल के मैंने ये सारी साहित्यिक चीजें पढ़ी है।
अच्छा, तो क्या आपको कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, या आपने लिखी हो या हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हो? कुछ पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी?
हाँ दीदी, आज की स्थिति में मुझको जो उनकी 2 पंक्तियां हैं, मंदिर मस्जिद बैर कराती मेल कराती मधुशाला, ये लाइन मुझको बहुत अच्छी लगती है। और एक है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, ये लाइन भी मुझको बहुत अच्छी लगती है।
जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मधुशाला वाकई पूरे हरिवंश राय बच्चन जी की एक ऐसी कृति है जिसने उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई।
और दीदी, उनके जो बेटे हैं अमिताभ बच्चन
जी,
वो तो सदी के महानायक है, और मैं उनकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ। उनको लेटर भेजती थी दिवाली के, न्यू ईयर के, और रक्षाबंधन के, हर त्योहार के, तो मुझको वहाँ से अमिताभ बच्चन जी के द्वारा थैंक यू लेटर आता था। दीदी, मेरे पास उनके फोटो है ऑटोग्राफ वाली, और जब मैं मुंबई गई थी तो उनके घर के सामने मैंने फोटो खिंचाया, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो, जैसे मैंने लिखा वीणा फ्रॉम रायपुर, तो वो बाहर आए और वो मुझसे मिले, और उन्होंने मुझको उनके घर की फोटो खींचने दिया। वो बोले परमिशन तो नहीं है, मगर आप हम अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन है, तो आपको मैं परमिशन देता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार पल थे, और उस समय मैं अपनी दीदी के साथ मुंबई गई थी।
अच्छा, विनोद जी यहीं थे उस समय?
उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी दीदी।
तो विनोद जी, देखिए आपने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया, आपको शादी पहले कर लेनी चाहिए थी विनोद जी।
मेरी दीदी उस समय PhD करती थी, तो गोवा में उनका कॉन्फ्रेंस था, जब रिटर्न हो रहे थे तो मुंबई में रुकी थी, और मेरी दीदी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर है।
दीदी आज बैठी हुई है, और मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, उनका नाम रेखा करकसे है, और हमारे सामने बैठी हुई है, आज हमारे मेहमान आई।
अरे वाह, तो हम उनसे भी 2 बातें कर लेते हैं, रेखा जी से। रेखा जी, विनोद जी और वीणा जी से तो हमारी बहुत अच्छी बातें चल ही रही हैं सप्ताह के श्रोता में, और आप एज अ गेस्ट उनके यहाँ आई हुई हैं, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि रेडियो अर्पा आपको कैसा लगता है?
बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इससे हमारे घर के सारे लोग बहुत लाभान्वित होते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो स्टार्ट किया प्रोग्राम, काबिले तारीफ है आप लोगों का ये प्रोग्राम।
चलिए, बहुत अच्छा लगा रेखा जी। अब हम विनोद जी से ये जानना चाहेंगे, सप्ताह के श्रोता में आकर आपको कैसा लग रहा है?
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और नए नए लोगों से हमको जुड़ने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से परिचय प्राप्त होता है, अच्छा लगता है कार्यक्रम।
अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रायपुर शहर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है, तो आप क्या कहेंगे?
सबसे मेन चीज, यहाँ के लोग मिलनसार है, एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो अच्छा से एंजॉय करते हैं, तो ये अच्छा लगता है मुझे तो।
वीणा जी, यही सवाल आपसे भी है।
दीदी, मुझको रायपुर में ये लगता है कि यहाँ के जो मतलब है कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और रायपुर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। दीदी, यहाँ पर जैसे हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी है, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे जरूरी है एम्स, वो रायपुर में आ गया है। और खेल का दीदी आप देखिए कि खेल में क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी का इंटरनेशनल ग्राउंड, स्विमिंग के लिए इंटरनेशनल स्विमिंग, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रायपुर का चहुमुखी विकास हुआ है, और रायपुर में सारी चीजें हैं, इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है मैं रायपुर के बारे में और क्या क्या बोलूं। और दीदी, संस्कृति तो आप देखिए, छत्तीसगढ़िया फिल्म बनना बहुत बड़ी बात हो गई है, आज बॉलीवुड में छत्तीसगढ़ी फिल्में जाने लगी।
जी वीणा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और अब विनोद जी की पसंद का एक और गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
फिल्म जसमुख फिल्म का गीत है, अलका याग्निक की आवाज में, गली में आज चांद निकला।
तो चलिए विनोद जी, आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं जख्म फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत, गली में आज चांद निकला।
जाने कितने दिनों
जी, एक सवाल जो मैं हर किसी से करती हूँ कि अगर आपको रेडियो अरपा पर कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए तो कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे?
शीर्षक गीत।
शीर्षक गीत
क्योंकि दीदी उस प्रोग्राम को दीदी आप कंपेयर करती है और बहुत अच्छे से कंपेयर करती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शुभ्रा दीदी जो शीर्षक गीत बजाती है और जो करती है वो प्रोग्राम करना चाहिए।
अच्छा,
क्योंकि दीदी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना रिमझिम वर्ड पे आप शीर्षक गीत कर रही थी, तो दीदी देखिए रिमझिम वर्ड अपने आप में कितना अच्छा है, और आप देखिए अगर मौसम में किसी चीज का अगर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है तो वो होता है बरसात, उस बरसात में आता है रिमझिम।
जी,
तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड आप चुनती हैं दीदी कि मुझको ऐसा लगता है कि किसी प्रोग्राम में अगर आने का मौका मिले तो शीर्षक गीत होना चाहिए।
चलिए वीणा जी, हम भी चाहेंगे कि आप सबकी ये ख्वाहिश जो है वो ज़रूर पूरी हो, और रेडियो अर्पा के लिए कोई सुझाव आप लोग देना चाहें।
दीदी, रेडियो अर्पा में तो ये प्रोग्राम अपने आप में ही इतना अच्छा समाहित है कि मतलब और इसमें कुछ नई गुंजाइश क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए आप जो है कुछ प्रोग्राम इसमें और रखिए कि जिसमें बच्चे की भी सहभागिता हो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल से तो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो उनका एक पर्सनल कुछ रहे कि जिस प्रोग्राम में बच्चे आ सके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दीदी वो नींव होते हैं, अगर नींव हुई मजबूत होगी तो फिर इमारत तो बहुत बुलंद बनेगी।
जी, वैसे बच्चों के कार्यक्रम भी बीच बीच में रेडियो अर्पा पर आते हैं, पर संज्ञा जी तक ये बात आपकी पहुंचेगी। विनोद जी, आप चलते चलते श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
दीदी, हम लोग चलते चलते अर्पा रेडियो के बारे में एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं, वो मेरे अपने विचार हैं या वो मेरे शब्द हैं अर्पा रेडियो के लिए, कि कल्पना की अंजलि में अर्चना के पुष्प लेकर वंदना करते हैं, साधना साकार होगी।
बहुत सुंदर। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं के लिए?
जी, कार्यक्रम सुनते रहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया है कार्यक्रम अर्पा का, बहुत मजेदार है, और हम अपनी आप सभी टीम को, पूरी आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।
और आपने हम लोगों का संयुक्त रूप से जो ज्वाइंट इंटरव्यू तो आप सभी को इसके लिए तहे दिल से हम लोगों के तरफ से शुक्रिया, पूरे टीम को
बहुत आभार आपका विनोद जी, वीणा जी, अपने कीमती समय में से आपने समय निकाला और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को ये बातचीत बहुत पसंद आएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद
जी, नमस्कार।
नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे सप्ताह के श्रोता विनोद वंडलकर जी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी वीणा वंडलकर जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और उनकी पसंद के गीत भी आपको सुनवाए। और अब अगली मुलाकात तक के लिए शुभ्रा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए रेडियो अर्पा 90.8 FM पर।
सप्ताह के श्रोता, हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे अर्पा रेडियो पर, जिसमें आज के हमारे श्रोता मेहमान साथी थे विनोद वंडलकर और वीणा वंडलकर, जिनसे बातचीत की शुभ्रा ठाकुर ने, सुनील चिपड़े ने।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 MHz पर।